ओम शांति। शिव बाबा जो सर्वशक्तिवान है, वो बाबा कहते हैं कि मैं साकार ब्रह्मा बाप के द्वारा इस धरती पर आकर के बच्चों को पूरा वर्षा देना चाहता हूं। लेकिन प्रश्न आता है कि क्या ये वर्षा सभी बच्चों को मिलेगा, सभी बाबा के बच्चे हैं? वर्षा क्या है? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। निर्मल मन, सदा हर्षित, धन संपत्तियों से भरपूर, निरोगी काया, क्या ये तीनों सभी को मिलेगा कि कलयुग और स्वर्ग उसको कहते हैं? स्वर्ग किसको कहते हैं? जहां हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस भरपूर है, जो भी आत्माएं उधर रहेंगी सत्युग में। कलयुग किसको कहते हैं? जिसको सुंदर शरीर है लेकिन सदा बीमार है, किसी के पास इतना धन है लेकिन घर में खाने वाले कोई नहीं है, किसी के पास धन भी बहुत है, तन भी अच्छा है लेकिन दिमाग ठीक नहीं है। तो हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, वेल्थ है तो हैप्पीनेस नहीं है, ये तीनों में इम्बैलेंस है, इसी का नाम कलयुग है। तो शिव बाबा कहता है मैं आकर कि बच्चों को वर्षा देना चाहता हूं, पूरा कम नहीं, सभी बच्चों को। तो प्रश्न आएगा, आप पूछ लो, क्या हमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस पूरा वर्षा मिलेगा, हर एक को मिलेगा? फिर आप में से कोई कहेगा भाई जी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। फिर प्रश्न आया, पुरुषार्थ क्या करना चाहिए? इस शरीर को सारे कल्प में कोई भी बीमारी नहीं आना चाहिए, तो क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? सारे कल्प में कभी भी गरीब नहीं बनना चाहिए, मांगना ना पड़े, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? सारे कल्प में कभी भी दिल सिकस्त अर्थात उदासी, सदा चेहरा देवताओं जैसा हर्षित रहे, तो इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है, साइंस ने या भगवान ने कोई ऐसा अभी तक चमत्कार नहीं किया कि इस ब्रह्मांड में क्या व्यवस्था है कि एक बीज बोलो तो आज भी ये धरती 50-100 दाना देती है। भगवान नहीं देता है, वो विधि बताता है, इसलिए भगवान का नाम है भाग्य विधाता। भाग्य बनाने की, तकदीर बनाने की विधि बताता है, करना हमको है। अगर उसमें भी नियम है, गेहूं का बीज बोते हो तो गेहूं ही उगेगा, ऐसे नहीं भोलानाथ है भगवान गेहूं का बीज बोलो तो चावल उग जाएगा, ऐसे साइंस ने या भगवान ने कोई चमत्कार नहीं किया है, हाइब्रिड किया है, मना बीज बोलो 2-3 महीने के बाद फल निकलने वाला 2 महीने के अंदर निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीज बो नहीं। तब कहा व्हाट यू सॉ सो शैल यू रीप, जो बोएंगे वो मिलेगा। अभी इसकी व्यवस्था बताओ आप कि शरीर को कभी कोई बीमारी नहीं आना चाहिए, हर एक चाहता है, तो क्या बाबा ऊपर से दवाई भेजेगा? भेजेगा नहीं। तो क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? तो बाबा ने व्यवस्था बताया, बच्चे ये तन आपका नहीं है, कल टिकट आया आपको आज नहीं कल आते हैं, नहीं टिकट आया छोड़ना है। तो शिव बाबा ने आके इस सृष्टि पर रुद्र यज्ञ रचा है, अश्वमेघ रुद्र यज्ञ कहते हैं, एक ज्ञान यज्ञ है, उस यज्ञ की अगर एक मिनट इस शरीर से कोई भी सेवा करते हो आप शरीर से, तो ये यज्ञ बाबा नहीं, ये यज्ञ एक का पदम गुना, एक जन्म के लिए निरोगी काया वरदान ये यज्ञ देगा। ये व्यवस्था, ये तन अश्व है, इस यज्ञ में इस तन के द्वारा मधुबन करो, सेंटर करो, गीता पाठशाला करो, बाबा ने सृष्टि पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम, ये यज्ञ है। इस यज्ञ की एक मिनट सेवा करो तन से, तो ये तन को ये यज्ञ से वरदान मिलेगा। यज्ञ करने से वरदान मिलता है, तो क्या वरदान मिलेगा? निरोगी काया। तो आप पूछ लो, हमारे पास सारे दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में हम इस यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं? कि भगवान भी चतुर सुजान है, बहुत हिसाब किताब रखता है, भोलानाथ नहीं है। तो कहेगा बाबा मेरी बीमारी ठीक करो, बाबा ये करो। बाबा ने व्यवस्था दिया है कि बच्चे मैं कुछ नहीं देता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं विधि बताता हूं, जो करेगा वो पाएगा। तब एक गरीब, एक श्रीमंत, एक करोड़पति, एक रोडपति, एक प्रजा, एक रॉयल फैमिली, एक राजा, कौन बनाता है? कभी कभी हमारे मन में प्रश्न आता है, बाबा ने मुझे ऐसा गरीब क्यों बनाया, ऐसा काला गोरा लंगड़ा क्यों बनाया? तो बाबा संगम पर आज बाबा ने मुरली में कहा, मैं अपना परिचय और मेरी जो जागीर है, मेरा जो पूरी व्यवस्था है, वो सबका ज्ञान देता हूं। तो बाबा ने स्वयं आके बताया इस धरती पर ब्रह्मा मुख से, बच्चे एक मिनट ये तन से इस यज्ञ की सेवा करो। फिर धन, जितना करते हो उतना धन मिलेगा। मन, ये आपको पता है, लेकिन यहां एक प्रश्न आता है, आज प्रश्नों का जवाब देना, नहीं तो सुनते रहते हैं, सुनना सहज है, तो सुनने के बाद आपके मन में बहुत प्रश्न है। तो आप में से कोई कहेगा, एक माताजी कहेंगी, भाई जी मैं तो बहुत बुजुर्ग हो गई हूं, 50-80 साल हो गए, मैं इस शरीर से कुछ नहीं कर सकती हूं, मेरी इस शरीर की सेवा भी दूसरों से मैं लेती हूं, मैं कर नहीं सकती हूं, तो मैं बाबा की यज्ञ की सेवा कैसे करूं? क्या मुझे सारे कल्प में ऐसे ही बुजुर्ग रहना पड़ेगा, बीमार रहना पड़ेगा? तो बाबा मुझे मदद नहीं करेगा? ये प्रश्न आया। तो उनके तन से वो क्या करे? कुछ नहीं कर सकते हैं। और संगम पर कल भी बाबा ने कहा, वर्तमान जितना पुरुषार्थ करते हो उतनी भविष्य की प्रारब्ध जमा होती है। वर्तमान के पुरुषार्थ के अनुसार, श्रेष्ठ कर्म के अनुसार, कर्म हम करते हैं, श्रेष्ठ कर्म का शुभ बाबा के श्रीमत के अनुसार जो कर्म करते हो उसका नाम श्रेष्ठ कर्म। किसी को खाना दिया, किसी को कपड़े दिया, किसी को दवाई दिया, कोई हॉस्पिटल खोला, स्कूल खोला, तो वो शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। शरीर एक का एक गुना मिलेगा, तो अगर आत्मा के लिए करते हो, आत्मा अविनाशी है और अविनाशी बाप श्रीमत देता है, कि बच्चे अविनाशी बाप के श्रीमत के अनुसार जो भी आप कर्म करते हो उस कर्मों का नाम श्रेष्ठ कर्म है। नहीं तो दुनिया में चार प्रकार के कर्म है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद पांच कर्म होते हैं दुनिया में, कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म, पुण्य का कर्म। पांचवा, यहां आने के बाद श्रेष्ठ कर्म। वहां पुण्य कुछ भी करते हो, दान, शास्त्रों में कहा, कोई गुरु ने कहा, कोई देवता ने कहा, और किसी ने कहा। यहां सर्वशक्तिवान भाग्य विधाता शिव बाबा आके जो मत देता है उसको कहा श्रीमत। उसके श्रीमत के अनुसार अगर एक मिनट इस यज्ञ की सेवा करते हो। अब वो माताजी ये भाई जी पूछता है, भाई जी मैं बहुत बुजुर्ग हूं, मेरे शरीर से कुछ नहीं हो सकता है, तो संगम पर थोड़ा समय है, खत्म हो जाएगा, तो मुझे क्या सारे कल्प में ऐसे बीमार ही रहना पड़ेगा? मेरे लिए कोई भाग्य नहीं? फिर और एक भाई पूछता है, भाई जी मेरे पास धन नहीं है, एक पैसा भी नहीं है। माताजी बोलती है, पति देता नहीं, बच्चे देते नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन शरीर बहुत अच्छा है, मैं शरीर से इस यज्ञ की सवेरे से रात तक जितनी सेवा कहो करने के लिए तैयार हूं। सवेरे से रात तक इस शरीर से जितनी सेवा करो, लेकिन पैसे भंडारे में डालने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो इन दोनों की कोई व्यवस्था बताओ, क्योंकि बाबा ने कहा मैं आज का मूल्य में दुख हरता सुख करता हूं, मेरा कर्म ही है संगम पर, सत्युग में मेरा कोई काम नहीं, क्यों वहां कोई दुखी नहीं है, तो मेरा मुख्य कर्तव्य है दुख हरता सुख करता। तो उस आत्मा के अंदर दुख है कि क्या मैं बाबा से ये वर्षा नहीं ले सकती हूं निरोगी काया, तो ये शरीर तो कुछ काम ही नहीं करता है, बीमार है, बुजुर्ग है, उसके लिए कोई व्यवस्था बताओ निवारण। दूसरा कोई कहता है मेरे पास धन नहीं है, तो तन अच्छा है, तन से दिन रात सेवा करना चाहता है, तो क्या मुझे बाबा सारे कल्प में धनवान बनाएगा, ऊपर से धन भेजेगा, तो मैं धनवान कैसे बनूं? कि कल रात को भी बाबा ने मुरली में कहा, ऐसे भी बहुत दफा कहा कि संगम पर जब मैं सर्वशक्तिवान भाग्य विधाता स्वयं आता हूं, उस समय जो श्रीमत ज्ञान शक्ति देता हूं, क्योंकि टीचर भी है, बाप भी है, तो बच्चों को मदद भी करता हूं, सिखाता भी हूं, तो इन दोनों से क्या मैं अपना भाग्य बना सकता हूं? एक भाई पूछता, मैं बहुत बुजुर्ग हूं तो क्या करे? हां उसके पास बहुत धन है, तो भाई पूछता, भाई जी इस धन से कुछ नहीं हो सकता है, तो मैं बाबा के भंडारे में धन देता हूं, 10 करोड़ रुपए देता हूं, तो क्या मुझे बाबा निरोगी काया वरदान देगा? कौन जवाब देगा? मिलेगा? माताजी कहती है, हाथ उठाती है, भाई जी धन डालो तो तन निरोगी काया मिलेगा। हां तो गेहूं का बीज बोलो तो बाबा चावल उगाएगा, ऐसी व्यवस्था हो गई ना। अभी माताजी कहती है, माताएं भोली नहीं है, हुशार होती है, तो माताजी ने कहा कि आप गेहूं का बीज बोलो तो बाबा चावल उगाएगा। उगाएगा? साइंस ने या भगवान ने ऐसे कोई चमत्कार किया अभी तक नहीं किया। तो यहां बाबा ने कहा मैं चमत्कार नहीं, विधि से सिद्धि। विधि ये है, जो बोएंगे जो करेंगे, तो आपने धन से कुछ नहीं किया, धन दिया, हां धन भरपूर है, इतना धनवान है, लेकिन तन ठीक नहीं है, सदा खटिया पर पड़े, बीमार है, तो क्या करे? भाग्य कैसे बनेगा? कोई व्यवस्था है तो बताओ। हां इसकी व्यवस्था है कि बाबा ने कहा करो या करवाओ, आप करो या करवाओ। अभी भाई जी के पास धन है, धन से किसी कर्म करने वाले कर्मचारी को ले लो, उनको बोलो सेंटर में बर्तन साफ करो, मकान बनाओ, व्हाइट वॉश करो, कोई गार्डन में पानी डालो, बर्तन कुछ भी सेवा करो, तो आपको मैं पैसा देता हूं। करो नहीं कर सकते, औरों से करवाओ। मंजूर? हर चीज का निवारण है। कोई कहेंगे भाई गरीब हूं, मैं बीमार हूं, मैं इस शरीर से कुछ नहीं कर सकता हूं, इस शरीर से कुछ नहीं होता है करके चुप बैठना नहीं। भगवान कोई ना कोई सॉल्यूशन देने आया है, निवारण देता है, विधि बताता है। बच्चे तुम्हारे शरीर से नहीं हो रहा लेकिन तुम्हारे पास धन है, धन औरों को देकर औरों से काम ले लो। यज्ञ का काम हो गया, बाबा की यज्ञ की किए आपने शरीर से किया या औरों से किया, चलेगा कि नहीं चलेगा? जो समझते चलेगा हाथ उठाओ। गुड। जो समझते नहीं चलेगा वो हाथ उठाओ। जो समझता नहीं होगा ऐसा कोई है? नहीं, कोई नहीं है। हाँ, एक मना सबको मंजूर। जो समझते हैं बुजुर्ग है, तन से सेवा नहीं कर सकते, उदास नहीं हो जाना कि मैं क्या करूं, मेरे से कुछ नहीं होता है, बाबा निवारण देता है। एक दूसरा और एक आया कि कोई भाई माताजी कहते हैं मेरे पास धन नहीं है, गरीब है, कुछ भी नहीं है, लेकिन शरीर बहुत अच्छा है, शरीर से दिन रात यज्ञ की सेवा करना चाहते हैं लेकिन धन नहीं है, तो क्या बाबा उनको धन देगा? उनकी कोई व्यवस्था बताओ, उसका कोई निवारण बताओ। हाँ, माता जी अकेले उठाती है, मम्मा की तरफ। तो लोगों को ज्ञान अभी सुनाओ तो कितना देंगे? 5 रुपया, 1000 रुपया देंगे? हाँ, थोड़ा सा देंगे, ऐसे नहीं। और ज्ञान सुनाने की भी योग्यता भी चाहिए ना, कोई सुन करके धन देवे, ठीक है। एक व्यवस्था बताया बाबा ने, मुरली में बताया, जैसे मम्मा के बताया, और कोई उपाय बताओ। अभी कोई ऐसे माता है भाई ऐसे ज्ञान सुना तो कोई पैसा देवे, ऐसा समय नहीं है, है ना? तो उसके लिए और कोई उपाय बताओ। तो कौन बताएगा? जो कहते हैं अपने पास धन नहीं है, बताओ। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि धन से धन नहीं गरीब है, कहीं भी बाहर जाके मजदूरी करो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कर्म करने के लिए तो कला भी चाहिए। हाँ, लेकिन व्यवस्था ऐसी है, उससे भी कहेंगे, बाबा ने कहा बर्तन भी साफ करो, मजदूरी भी करो तो धन मिलेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कहीं जाके कोई काम करो, बहुत अच्छे अच्छे बाबा के रॉयल बच्चे हैं, वो जाके बाहर मजदूरी करे, बर्तन साफ करे, ऐसा तो आज की दुनिया में नहीं है। तो बाबा ने उसकी एक व्यवस्था दिया है। बाबा ने कहा बच्चे आपके पास धन नहीं है लेकिन आपके घर में खेती है, गाय है, भैंस है, घर में दूध है, तो आप सेंटर में बहन जी को 100 रुपया निकाल करके एक महीने में दूध लेना पड़ता है 1 लीटर रोज, बाबा को भोग लगाने के लिए भंडारी से 100 रुपया निकालना पड़ता है। तो आप दीदी को बताते हो दीदी आप मार्केट से दूध नहीं लेना, हमारे घर में गाय है, तो 1 लीटर दूध ला के दिया तो आपके नाम से 100 रुपया जमा हो गए ना। आपके खेती में अनाज है, सब्जी उगती है, किसी के आज के भारत में सबके पास खेती है, खेती में सब्जी उगती है, अनाज है, तो बाबा को रोज भोग लगाने के लिए मार्केट से सब्जी लाना पड़ता है, अनाज लेना पड़ता है, भंडारे से 100 रुपया निकालना पड़ता है। अगर आप रोज बाबा को भोग लगाने के लिए ताजी सब्जी ला के देते हो, अनाज ला के देते हो, तो 100 रुपया आपके नाम से जमा हो गया है ना। बाबा विधि बताता है, ऐसे नहीं कैसे करो, इसके लिए बाबा को कहते हैं शिव बाबा कौन, क्या नाम उनका, दुख हरता, सुख देने की, भाग्य बनाने की विधि बताता है। इसलिए भाग्य विधाता का दुख ऐसे दूर नहीं करता है कुछ दे करके, विधि बताता है। डॉक्टर ऐसी बीमारी मिटा नहीं सकता, दृष्टि दे दो, सिर पर हाथ रखो, बीमारी जाएंगी नहीं। बच्चे ये दवाई खाली पेट ले लो, ये गोली शाम को ले लो, है ना, विधि बताता है। तो उस विधि पूर्वक अगर आप दवाई लेते हो तो बीमारी जाएंगी। भगवान दृष्टि दे दो, सिर पर हाथ रखो, हाथ जोड़ता हूं, उपवास रखता हूं, आपके रोज फोटो रख के पूजा करता हूं, तो होगा बीमारी? डॉक्टर की फोटो रखो, पूजा करो, हार चढ़ाओ बहुत बड़े बड़े लाके, जाएगा? वितप का भगवान कौन, विधाता, विधि बताता है। और थोड़े एक दिन के लिए नहीं, सारे कल्प के लिए मिनिमम गारंटी देता है, 21 जन्मों तक गारंटी है, उसके बाद भी है। तो कर्म करो, अगर इस तन से, अब तन से नहीं होता है, करवाओ। कभी माताएं सेंटर में जाती है, माताओं को कहती है, बहन जी माताजी आप आओ, सब्जी काटो, मेहमान आने वाले है, आज ब्रह्मा भोजन है। माताजी घर से दौड़ दौड़ के आती है, मुरली सुननी है, लेकिन बहन जी ने आते ही कहा सब्जी काटो। अब उनके मन में विचार चलता है, घर में भी तो हम सब्जी काटते थे, वो इधर आकर भी वही करना है, तो घर में होते थे, तो विचार चलता है। तब बाबा ने कहा कि विधि है कि अगर आप बहन जी से पूछ लो, बहन जी अब भी काटना जरूरी है, नहीं तो 5 मिनट मुरली सुनो फिर सेवा करो, या सेवा करने के बाद में सुनो, सेवा के लिए ना नहीं करना। ये सेवा बहन जी की नहीं, शुभ बाबा की, यज्ञ की। एक मिनट भी इस तन से सेवा करते हो, ज्ञान को याद रखना पड़ता है, ये भाग्य है, भाग्य बनाने की विधि है। अगर आप कहेंगे नहीं मेरे से नहीं होता, मैं ना कर दिया, आपने अपने भाग्य को लकीर लगा दिया। भगवान कैसे भाग्य बनाए? तो बच्चों के द्वारा, ये विधियां है। तब का कभी सेंटर में भाई आता है तो बहन जी कहती है, भाई जी इनको स्टेशन छोड़ के आओ, ये काम करो। कभी दुविधा होती है क्योंकि हम सिर्फ वर्तमान देखते हैं, समझते बहन जी ने मुझे सेवा में लगा दिया, मैं आया था मुरली सुनने के लिए, योग करने के लिए, तो वो बहन जी की सेवा नहीं, वो सेवा शुभ बाबा की, यज्ञ की है। तो यज्ञ की सेवा करते हो तो पदम गुणा, और श्रीमत के अनुसार करते हो, मन मत नहीं। अब इसके अंदर भी एक याद रखना, श्रीमत और मन मत, बहुत दूध में पानी मिक्स कर सकते हैं, श्रीमत में मनमत मिक्स होता है, हो सकता है? श्रीमत तो श्रीमत, मनमत कैसे मिक्स होगा? ये भी बहुत सूक्ष्म लकीर है। बाबा मुरलियों में कहता है, बच्चे ऐसे बड़े बड़े पोस्टर बनाओ, ऐसे किताब लिखो, ऐसे ये करो, तो कहीं बाबा के बच्चे होशियार है, समझदार है, एबिलिटी है, ताकत है, एजुकेटेड है। तो कहता बाबा ने कहा तो लगा दिया, आपने बोर्ड लगाया कुछ लिख करके, अगर वहां एक शब्द गलत हो गया किसको पूछेंगे? आपको नहीं, नाम अपने ब्रह्मा कुमारी लिख दिया, एड्रेस सेंटर का दिया, तो सेंटर के टीचर को पूछेंगे ब्रह्मा कुमारी के ऊपर आएगा। तब बाबा ने एक व्यवस्था दिया है। तो श्रीमत और मनमत, उदाहरण बताता हूं, अभी देखो मुरली में आता है, बच्चे तन से सेवा करो, भाई जी अंदर ही अंदर सोचता है, बाबा आज नौकरी में छुट्टी नहीं मिलेंगी, आज बिजनेस में बहुत बिजी, आज तन से सेवा नहीं कर सकता है। फिर बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे मन से करो, नहीं बाबा, जहां तन लगेगा वहां मन भी लगेगा ना, मन यहां और तन वहां, नहीं नहीं कर सकते, अंदर ही अंदर सोचता है। तीसरा बाबा ने कहा बच्चे धन से करो। हां धन से हो सकता है, देखता है जेब में 100 रुपया है, बाबा धन से कर सकता हूं, क्या करूं? चारों तरफ देखता है, पर्दे लगाया है, सब कुछ है सेंटर में, सभी लोग चेयर पर बैठे हैं, थोड़े से माताएं भाई बुजुर्ग है जमीन पर बैठे हैं, वो आगे आगे बैठता है। तो उसके मन में आया कि सेंटर में चेयर कम है, 100 रुपया में एक चेयर आ सकती है। मुरली सुनी, सीधा मार्केट में गया, 100 रुपया में एक चेयर आई, लाके सेंटर में रख दिया, चलेगा ना? तन से तो नहीं हुआ, मन से नहीं हुआ, को और जानी यथाशक्ति, धन से तो सेवा किया, चल रहे, चलेगा ना? जो समझता है चलेगा वो हाथ उठाओ। अरे तम है, जो समझता है नहीं चलेगा वो हाथ उठाओ। क्यों नहीं चलेगा? हाँ ये किसी को समझ में नहीं आता है। कभी कहते बाबा ने मुरली में कहा, बाबा का श्रीमत है। हाँ बाबा की मुरली श्रीमत है, श्रीमत सुनकर इस हॉल से बाहर कुछ करो, लेकिन इस हॉल में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो इस हॉल की व्यवस्थापक है, इसका सब मैनेजमेंट देखने वाला, व्यवस्था करने वाला कोई निमित्त आत्मा है। आज आप कहेंगे भाई जी ये कैमरा यहां नहीं, उधर हमको दिखाने देता, उधर रख दो, एक भाई आएगा उठा के उधर रख देगा, उधर वाला बहन जी कहेंगे नहीं इधर नहीं इधर रख दो, तो उसको इधर उधर करते रहो, नहीं यहां की निमित्त कोई आत्मा है, उसको बताएंगे ना भाई जी ये हमको दिखाई नहीं देता, आप इसको इधर रखो, नहीं नहीं उधर आपको रखेंगे ना तो उनको तकलीफ होंगी, उधर रखेंगे तो उनको तकलीफ होंगी, आप ही बाजू में बैठो, वो बताएगा। ऐसे ही अगर आपके मन में विचार आया कि मेरे मन से, उसको कहा मन से सेवा, मन मत कहा, तो श्रीमत विचार आया आपका ठीक है सेवा करना चाहिए धन से, तो बहन जी को पूछ लो, बहन जी आज बाबा ने कहा तन से मन से करो, मैं नहीं कर सकता हूं लेकिन धन से सेवा करना चाहता हूं, मेरी ताकत इतनी है और लगा मुझे कि सेंटर में चेयर कम है, एक चेयर लेके आता हूं। नहीं भैया बहुत चेयर्स पड़ी है, रखी नहीं है क्योंकि जगह कम है, जो जमीन पर बैठ सकते आगे आगे उनके लिए जगह रखा है, आप उसके बदले भंडारे में डालो और कोई सेवा करेंगे काम में आएगा, तो एक का पदम गुना जमा होगा। दुनिया में बहुत लोग सेवा करते हैं, बहुत लोग गरीबों को हमने देखा एक जगह पर, जिसके पाव नहीं जिसको हाथ नहीं, जयपुर फूट कहते हैं उसको, एक भाई तो मैंने एक जगह देखा 100 जो अपंग है उनको जयपुर फूट करके पाव बना के रेडीमेड बहुत दान करता, हॉस्पिटल खोलते हैं, तो दान करने की भी विधि है, तो पदम गुना जमा होना चाहिए। कभी कभी आपके मन में विचार आता होगा, सुनते हो आप दुनिया में भी लोग हरेक कहते हैं दुआएं कमाओ, है ना, दुआ मिलेंगी, गरीबों को खाना दे दो दुआएं मिलेंगी, गरीबों को सेवा करो दुआएं मिलेंगी, क्या गरीबों के पास दुआएं है ये सोचते नहीं है, एक साइडेड सोचते हैं, सेवा करो तो दुआ मिलेंगी, गरीबों की अगर आप सेवा करो क्या उसके पास दुआ है, दुआ क्या है? अगर एक गरीब को 10 रुपया दे दो वो क्या देगा, एक राजा की सेवा करो वो क्या देगा, इनाम में हीरे जवाहरात देगा, गरीब क्या देगा जिसके पास कुछ भी नहीं, तो दुआएं क्या है उसको भी कभी सोचना, दुआएं किसको कहते हैं, दुआ देने का वरदान देने का शक्ति देने का अधिकार एक ही के पास है, जो सदा भरपूर है वरदाता है, तो भगवान की सेवा करो, वो जो दुआ देता है वो सारे कल्प के लिए, एक दिन के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, अविनाशी, तो ये दो बातें भी कभी सोचना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं दुनिया में कहते हैं मनुष्य महावाक्य है, भगवान के महावाक्य और मनुष्य के महावाक्य में अंतर है। मनुष्य दुनिया में कहते हैं ये करो तो दुआएं मिलेंगी, ये करो तो दुआएं मिलेंगी। दुआ क्या, क्या देंगे, कौन किसके पास क्या है? तब एक सिंपल उदाहरण बताता हूं। अगर देखो ये दोनों भाइयों के पास 100-100 रुपया है, 100 रुपया इसके पास भी उसके पास, दोनों एक साथ एक ही बैंक में जाते हैं और एक ही बैंक वालों को ये भाई देता, भाई जी मेरा 100 रुपया बैंक में रख दो। दूसरा भाई भी जाता है उसके साथ ही, मेरा 100 रुपया एक साल के लिए बैंक में रख दो। एक साल के बाद दोनों जाते हैं, एक को 100 रुपया देता है बैंक वाला और एक को 110 रुपया देता है। क्यों? दोनों ने एक साथ बैंक में रखा, एक ही बैंक में रखा, एक ही साथ लेने के लिए भी गए, एक को 110 दिया, एक को 100 दिया। क्यों? कारण एक शब्द दूसरे भाई ने ऐड किया, उसने एक 100 रुपया दिया, इसने कहा एक साल, एक शब्द 10 गुना इंटरेस्ट मिल गया। हम भंडारे में पैसे डालते हैं, भंडारी में डालते, सेवा करते हैं, नहीं बहन जी ने कहा था इसलिए कर रहा हूं, तो बहन जी देंगी ना। किसकी स्मृति में सेवा कर रहे हो? अगर बाबा को सामने रख के, तो बाबा ने वादा किया बच्चे मेरे श्रीमत के अनुसार अगर कुछ भी करते हो, एक का पदम गुना। सेंटर में सफाई भी करो, बाबा का सेंटर है। बहन जी की भी कोई सेवा करो, बहन जी के घर में जाके नहीं करते हो, बाबा का सेंटर है, ईश्वर के विश्वविद्यालय है ये। उस सेंटर की कोई न कोई सेवा करते हो, करते समय बुद्धि में स्मृति, क्या स्मृति? शिव बाबा आपके श्रीमत के अनुसार आपकी यज्ञ की सेवा कर रहा हूं, एक का पदम गुना जमा होता है। सेवा वही है। और एक व्यक्ति नहीं, उन्होंने कहा था वो करता इसलिए मैं करता हूं, किसी को देखकर, किसी देहधारी के प्रभाव में देखा देखी कुछ करते हो तो एक का एक गुना मिलता है। और बाबा ने कहा भविष्य में तो मिलेगा, कल बताया देखना, अब भी वर्तमान में खुशी, वर्तमान अभी लगता है, कितनी भी सेवा करो सदा हर्षित, क्योंकि शरीर समझ के नहीं कर रहे हो। बाबा को याद कर, वो लाइट है, आप भी लाइट का अनुभव करते हो वर्तमान, भविष्य तो आई है, वर्तमान भी कभी भी कुछ भी सेवा करते हो तो शुभ बाबा की स्मृति, बाबा ने कहा था, बाबा की यज्ञ की कर रहा हूं, पदम गुना जमा करता है। नहीं तो सेवा करते समय, कल बाबा ने कहा था पुण्य जमा नहीं होगा, कल सवेरे के मुरली, पुण्य कब जमा होगा? मैं और मेरा पन, अगर ये दो है, मैंने ये सेवा किया, ये मेरा नाम होना चाहिए, मेरा उसके अंदर फोटो होना चाहिए, मेरा जैसे मंदिर में नाम लगाते हैं, इन्होंने 1,00,000 रुपए दिया, इन्होंने इतना दिया, मैं आया, मेरा आया, सेवा तो किया आपने जरूर, मिलेगा भी जरूर, एक का एक गुना। जो भगवान का वादा है पदम गुना, उसके लिए कंडीशन है मैं और मेरा शब्द न हो। संभव है? सुनने के लिए अच्छा लगता है, आप इसको अपने जीवन में लगाओ। जब भंडारे में सेवा करते हो, सेंटर में कुछ करते हो, सेवा करना चाहिए, दुनिया में बहुत जगह पर है, जैसे आप गुरुद्वारे में जाओ वहां भी देखो निस्वार्थ सेवा है, चप्पल को साफ करते, चप्पल लाइन से रखते हैं, है ना, सब जगह सेवा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, खाना खिलाते हैं गरीबों को, मलम पट्टी करते बीमार व्यक्तियों को, दान देते हैं, लेकिन स्मृति रहती है कि शरीर मैं मेरा नाम हो, तो एक का एक गुना, श्रीमत और मनमत। भाग्य बनाना चाहते हो, हर एक चाहता है। नहीं तो देखो, आप पूछेंगे भाई जी मैं रोज मुरली सुनता हूं, एक दिन भी मिस नहीं किया, रोज धन से भी सेवा करता हूं, ये बीमारी क्यों आई, ये बीमारी क्यों, मैं एक दिन भी मुरली मिस नहीं किया, श्रीमत पर चलता हूं, ये बीमारी क्यों। प्रश्न आता है, हम इतने साल से ज्ञान में चलते हैं, गरीब क्यों। तो विधि बताता है बाबा, बच्चे तन मुरली सुनी, तन से सेवा नहीं किया। ये तन हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, आपको दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, तो आपको बोना पड़ेगा तीनों बीज। अगर एक नहीं है तो मांगना पड़ेगा। ये मांगने के मंदिर में जाकर भगवान मुझे ये दे दो, ये दे दो, मांगना क्यों पड़ा। जब बरसात आई तो आपने खेती में बीज नहीं बोया, अपना भाग्य बनाया नहीं, उगा के नहीं रखा, मांगना पड़ेगा। गरीब क्यों बने। धन किससे, तन बहुत अच्छा है, सुंदर है, कोई बीमारी नहीं, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्यों गरीब हो है? किसने किया? क्या भगवान किसी को गरीब किसको श्रीमंत करता है? तब हम कहते हैं कर्मों की गति कहते हैं। तो कर्म क्या, कल रात को बाबा ने बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया, अब वर्तमान जो श्रेष्ठ कर्म करते हो उसके अनुसार भविष्य का भाग्य बनता है। भाग्यवान कैसे बनेंगे, देवता कैसे बनेंगे, सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं, संस्कार से संसार बनता है। ज्ञान को आचरण में लाओ, कर्मों में लाओ। तो कर्म करते समय तन आता है, तो तन की व्यवस्था बताया, तन से सेवा करो, मैं मेरा मैंने किया, ये आता है तो एक का एक गुना पुण्य नहीं जमा होता है। और वर्तमान भी खुश नहीं, मुझे सम्मान नहीं दिया, मेरा सुना नहीं, मेरा रिस्पेक्ट नहीं, सेंटर का ओपनिंग बनाया किया, मुझे बुलाया नहीं, अभी बहन जी के सामने है, कोई 10 लाख देता है, कोई बहुत बड़ा है, आपने 100 रुपया दिया था, आप भी इच्छा होती है मुझे भी कुछ मान मिलना चाहिए, तो क्या करे। तब बाबा ने कहा गुप्त दान। तो आप किसको दे रहे हो, किसी व्यक्ति से अगर इच्छा करते हो तो अभी कच्चा फल खाया, तो देते हो किसको। तब अगर ये स्मृति है तो तन निरोगी काया, एक मिनट करो, फिर पूछना कितना मिनट हम इस यज्ञ की सेवा करते हैं, धन दिया तन नहीं लगाया, बाबा ऊपर से दवाई नहीं देगा अपने आप। हाँ बहुत धनवान बनाएंगे, बहुत धन है, खाने वाले घर में कोई भी नहीं, इतना धन है, लेकिन तन सदा बीमार, होते हुए भी खा नहीं सकते हैं, तो क्या फायदा। तब बाबा ने व्यवस्था पूरा, अगर वर्षा चाहते हो तीनों संगम पर तीनों बीज बोलो, फिर आपके हाथ में है, एक जन्म, 10 जन्म, 25 जन्म, 50 जन्म, कितना जन्म, कब तक चाहिए, वो भी बाबा ने व्यवस्था, एक का पदम गुना, एक मिनट अगर करते हो एक जन्म, कितना जन्म, कितनी मिनट सारा दिन में सेवा करते हो। कभी प्रश्न आता है भाई जी ये देवी क्यों बन गई, ये नारायण क्यों बनाया। आज बाबा ने कहा हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण, ये नारायण किसने बनाया, अपने आप बना। ब्रह्मा बाबा को नारायण किसने बनाया, अपने आप बना, मनमत से बना, अपने मत से कहा नहीं, उन्होंने अपना तन लगाया, धन पूरा, इतने बाबा के बच्चों को धन लगाया, मन भी खुद भी चुप नहीं बैठे, सुबह सवेरे सवेरे 2 बजे उठ करके बच्चों को मुरली लिखते थे, मुरली सुनाते थे, तपस्या करता था, इतने खासी आती थी, इतने बुजुर्ग थे, और माउंट अबू में इतनी ठंडी थी माइनस, तो भी दो दो बजे उठ के अपने लिए तपस्या किया। कर्मातीत बने, इसलिए कहा तपस्या भूमि है वो। भगवान ने इस धरती पर आके कर्म किया। बाबा अपने हाथ से गोबर के गोले भी बनाते था, फौड़ा लेकर के खेती में उधर ही जहां शांति स्तंभ है वहां सब्जी लगाते थे, वहां काम करता था अपने हाथों से सवेरे सवेरे। तपस्या भी किया, तन भी लगाया, अपना जितनी कमाई थी किसी को दिया नहीं। 300 350 जो बाबा के बच्चे उधर से आए थे भारत में, उनको 14 साल तक खिलाया पिलाया पालना किया, तन मन धन संपूर्ण लगाया, कभी मेरा नहीं कहा, अपना नाम भी नहीं। 5 बच्चों का नाम दिया, इनका है निमित्त, उनका अपना नहीं। तब कहा कि इतना लक्ष्मी नारायण नारायण कैसे बन गया, अपने अपने बना। तो बाबा उदाहरण साकार में भगवान ने आके कर्म करके दिखाया, कहते हैं कैसे किया, हमारे सामने कैंपल है। तन मन धन तीनों लगाया, तब इसलिए सत्युग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों संपूर्ण है। नहीं तो आज कलयुग की दुनिया में देख लो, किसके पास सुंदर शरीर है सदा बीमार, किस काम का वो, धन इतना है खाने वाले कोई भी नहीं है, किस काम का वो धन, स्वयं भी नहीं खा सकते, शुगर है बीमारी है, धन होते हुए भी खा नहीं सकते हैं, वो धन किस काम का। तब बाबा कहते बच्चे संसार में जीने के लिए ये तीन चीजें चाहिए, सबसे पहले हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। तो ये तीनों कोई बाबा ऊपर से भगवान को याद करने से सिर्फ नहीं मिलेगा, सबका जवाब है बाबा की याद करो नहीं, कर्म भी चाहिए पढ़ाई भी चाहिए, क्योंकि तीनों तीनों बीज बाबा कुछ नहीं देता है। तो भाग्य बनाने की तरीका दोनों, कभी भी मुख से ना शब्द नहीं आना। अगर कोई सेवा कहा किसी ने, नहीं मैं नहीं कर सकता हूं मेरे पास नहीं, बाबा ने आपका भाग्य बनाने की विधि दिया, एक मौका दिया, चांस दिया, तो चांसलर बन सकते हो। बहन जी को आपकी सेवा नहीं, बाबा को आपकी सेवा जरूरत नहीं है, बाबा के हजारों भुजाए हैं, आपने तो दूसरा है, आपने नहीं कहा किसी कारण से, दूसरा कोई करेगा, लेकिन आपका भाग्य, आपका क्या हुआ। तो भाग्य कैसे बनाएंगे आप, क्या विधि है। तो तन मन और धन, मन भी, मन को भी स्वच्छ रखने के तरीका बताया। बच्चे रास्ते पर चलो, किसी को देखो, मन में नंबर 1 पवित्रता है, नंबर 1 राजयोग है, कुछ भी नहीं चाहिए, मन निर्मल। आज भी कहा कल भी रात को, मन जीत जगत जीत, मन को कैसे जीतेंगे आप, मन चंचल है। किसी को देखे, जैसे भक्ति में हाथ में माला होती है, राम 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 करते जाते हैं, यहां मन में, क्योंकि मन ही सारी दुख बीमारी पापों का कारण है। किसी को भी देख लो, अच्छी तरह से देख लो मन में, शुभ बाबा ये आपके बच्चे हैं, इनका कल्याण करो, इनको सद्बुद्धि दे दो, इनको सदा सुखी बनाओ, औरों के प्रति शुभ सोचना सीखो। इससे आपने कहने से उनको कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ आपने अपने को बचाया। नहीं तो किसी को देखते ही, हाँ ये भाई ने मुझे कल बहुत परेशान किया था, ये भाई ने 10 साल पहले मुझे इतना दुख दिया था, हाँ दिया था 10 साल पहले, आज नहीं, लेकिन आज उसको देखते मेरा मन मैला हो गया। तो ये मैला मन लेकर के आप सो सकते हो, योग में बैठ सकते हो, सारा दिन में हर्षित रह सकते हो। तो मन मेरा है उसका नहीं, परिस्थिति आएंगी तो अपने बचाव के लिए कहा, कोई गुस्सा करता है, दुख देता है, गलत बोलता है, इंसल्ट करता है, हाँ करता है, उस समय मुझे कहना चुप नहीं रहना है। चुप रहेंगे तो कान सुनाई देता है, कान में जाता है, वो बाद में अंदर चलता रहेगा। उस समय मुख से चुप रहो, मन से बोलो, शिव बाबा आपने मुझे कहा था चुप रहो, आपके श्रीमत के अनुसार आपको देखकर मैं चुप रहती हूं, आप इस बच्चे को शांत करो, इस बच्चे को शक्ति दे दो, इस बच्चे का कल्याण करो। बोलो जरूर, लेकिन मुख से नहीं बोलना है, मन से बोलना है। कहा बोलना नहीं, चुप रहो, चुप मुंह से रहे आप, लेकिन मन तो सुनता है, अंदर जाएगा, सारी रात चलता रहेगा, 10 साल तक चलता रहेगा, तो उसके बाद मन रिसीव करता है। मन रिसीवर को एंगेज रख दो, उस समय ही मुंह से बंद, मन से जरूर बोलो। कैसे बोलो, शिव बाबा आपने ये दोषी नहीं है, मेरा कुछ हिसाब किताब हो सकता है, तो ये इतना गुस्सा करता है, इतना दुख देता है, लेकिन वो आपका बच्चा है और आपने मुझे कहा तुम चुप रहो, मैं देख लूंगा। तो कहा बाबा ने, हिम्मत है बच्चे, मेरी हिम्मत रखो, 1 मिनट 2 मिनट चुप रहो, सदा नहीं, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद। शाम को पति घर में आया, सवेरे बोल बोल के गुस्सा करके गया, शाम को आने के बाद पूछ लो, सवेरे आप इतने जोर जोर से बोल रहे थे, क्यों, क्या हुआ? उस समय आप अपना जवाब दे दो, सुनेंगे, निवारण निकलेगा, हाँ या ना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हुआ। अगर उस समय आप जवाब देते हो, तवा गर्म है, आप बहुत प्यार से बात कर रहे हो, ठंडा पानी डाल दिया आपने, तो क्या होगा, तवा तो गर्म है। कभी हम कहते बहुत प्यार से व्यवहार करो, प्यार से बात करो, आप तो प्यार से कर रहे हो, लेकिन उधर गर्म है, तो वहां प्यार काम, ये दुनिया का ज्ञान है, यहां प्यार काम नहीं करेगा, वहां मुख से चुप रहो, मन से बोलो, ये ईश्वरीय श्रीमत है। भगवान आके क्या पढ़ाता है, दुनिया क्या पढ़ाती है, दुनिया कहती है तुम चुप रहो, इतने तो चुप मुंह से रहे, मन सुनता है, शरीर ने मुंह नहीं सुनता है, कान नहीं सुनता, आत्मा चैतन्य वो सुनता है, मन में बाबा से बात करो, ये ईश्वरीय श्रीमत है। ईश्वर आके पढ़ाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है, पापों से बचने की विधि बताता है, तब का इसको कहते हैं दुखहर्ता, सुख देने की, सुख प्राप्त करने की विधि बताता है। ऐसे दुखहर्ता सुख करता नहीं, भगवान मेरा दुख दूर करो और आप हाथ में हाथ डाल के आराम से बैठो, भगवान मैं आपकी पूजा करता हूं तो होगा, नहीं, विधि बताता है। परिस्थिति आएंगी, गुस्सा करेंगे, समस्याएं आएंगी, कोई दुर्व्यवहार करेगा, सब कुछ होगा, तो मुझे क्या करना। अगर आप ज्ञानी तो आत्मा समझते हो, बाबा के बच्चे समझते हो, पूरा बाबा से वर्षा लेना चाहते हो, ये मनसा सेवा करो, मन सेवा में लगाओ उस समय, तो बाबा से बात करो, बाबा ये आपका बच्चा है, आपने मुझे कहा था, मैं आपके श्रीमत के अनुसार मैं चुप रहता हूं, मैं कुछ नहीं बोलता हूं, बाबा आप देख लो, उस आत्मा को आप शांत करो। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम हिम्मत रखो, मैं देखता हूं, मैं आया हूं। तब भारत में शिव जयंती मनाते हैं, शिव आया है। शास्त्रों में भी कहते हैं यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, मैं स्वयं आता हूं, हर एक को देखता हूं, लेकिन किसी के कर्म क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करता हूं। हर एक को जीने का अधिकार है, जो जैसे करेगा वैसे पाएगा, नहीं तो सभी राजाएं बनेंगे। राजा भी चाहिए, झाड़ू लगाने वाला भी चाहिए, है ना, तो जैसा कर्म। तब कहा पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, पढ़ाई ज्ञान चाहिए, जब ज्ञान सुनते हो याद ध्यान से सुनना, फिर यहां से अभी खाने पर जाएंगे, बाहर जाएंगे, सोच लो, अपने आप को पढ़ाओ कि क्या कहा बाबा ने आज, क्या मैं कर सकता हूं ऐसा। पति बच्चे बहू सास सब गुस्सा करते, परेशान करते हैं, करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। उनका वर्णन नहीं करो, उनका चिंतन नहीं करो, अपने से पूछो ऐसे ऐसे व्यक्ति के साथ मुझे क्या करना चाहिए। कोई शराब पीता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई और कुछ करता है, बहुत कुछ है, मुझे क्या करना चाहिए। तो यहां इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो पढ़ेंगे, जो लिखेंगे और आचरण में लाएंगे तब बनेंगे नवाब। राजा अपने आप नहीं, हम रोज मुरली सुनते हैं तो राजा बन जाएंगे, सफेद कपड़े पहनने से बन जाएंगे, नहीं। तो आचरण चाहिए, थोड़ा सा सुनो। तब कहा तन, पूछना तन हम बाबा के यज्ञ की सेवा में कितना लगाते हैं? नहीं लगा सकते हो, बुजुर्ग है, दूसरों से लगाओ, सेवा करवाओ। उनको आपने 100 रुपया दिया, आपने करवाया। धन नहीं है, धन से नहीं कर सकते हो, तो और कोई तरीके है। आपके पास अनाज है, सब्जी है, दूध है, किसी न किसी प्रकार से यज्ञ की सेवा होनी चाहिए। बाबा हर प्रकार का निवारण देता है, ये नहीं तो ये, हर चीज का सब्स्टिट्यूट है। कभी बाबा कहते ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, वो भी देख लो, कभी कहते ये नहीं खाओ, तो ये कैसे होगा, ऐसे दुविधा भी होती है, क्या करे। देखो एक सन्यासी को बोन टीबी दी थी, मनुष्य हड्डी सारी पोली पोली हो जाती है, खाली हो जाते नरम, बोन टीबी। तो उसको एक एलोपैथिक डॉक्टर ने कहा अगर आपको जीना है तो रोज एक अंडा खाना चाहिए, नहीं तो आप जी नहीं सकते हो। उसने कहा मैं साधु हूं, मैं अंडा कैसे खा सकता हूं, जीना हो तो खा लो, नहीं है तो जल्दी टिकट आएगा, अभी क्या करे बताओ। कभी कभी बाबा कहते हैं बच्चे ये नहीं करो, ऐसा नहीं खाओ, तब लगता है बाबा आपको क्या पता संसार में क्या होता है, संसार में कैसे होते हैं। लेकिन बाबा ने निवारण दिया है, निवारण है, हर चीज का सॉल्यूशन है, सब्स्टिट्यूट है। तो उसको उसने फिर अलग अलग डॉक्टर से, होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछा, आयुर्वेदिक डॉक्टर, उसने कहा, डॉक्टर ने क्या कहा, अंडा खाओ, अंडे में क्या है, वो आपको मक्खन में मिलता है, जो चीज अंडे से मिलना है वो मक्खन भी वही चीज है। हर चीज का निवारण है, सब्स्टिट्यूट है। इस बीमारी के लिए अगर ये चाहिए तो बाबा कहता है ये नहीं करो तो क्या करो, ये नहीं खाओ तो क्या खाओ। हर चीज का एक एक का एक्सप्लेनेशन है, तो ज्ञान विस्तार है। तो जब रोज अगर कोई मुरली ध्यान से सुनता है, मुरली के अंदर सब कुछ आता है, दुनिया के कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, दुनिया की किताबों में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। भगवान की मुरली के अंदर जो दुनिया में कहीं भी नहीं है वो आपको मिलेगा। तब उसको कहा ज्ञान का सागर है वो, कैसे ज्ञान यूज करना उसका ज्ञान देता है। तो वो मनुष्य के एक ज्ञान है, एक कहानी है, कथा है। हाँ ऐसा था, ऐसा हुआ, ये हुआ। ज्ञान जीवन में आचरण में लाने के लिए है, अपने विचार, अपनी वृत्ति, अपनी दृष्टि, अपने बोल, अपने कर्म की जीवन शैली को चेंज करने के लिए है। तो ज्ञान किसको कहते हैं और शास्त्रों में जो कहानी है और कुछ है वो क्या है, इन दोनों को अच्छी तरह से डिफरेंस को जानना चाहिए। तो समझ में आया, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों कैसे मिलता है। आप कभी ऐसे नहीं कहना हम इतने ही रोज मुरली सुनते ये बीमारी क्यों, हम रोज श्रीमत पर चलते ये गरीब क्यों। हर चीज का तन मन तीनों लगाना चाहिए। गेहूं बोया आपने, गेहूं मिल गया, चावल कौन देगा, दाल कहां से आएंगी, दाल भी बोया सब्जी कहां से आएंगी, मांगने जाना पड़ेगा। तो तीनों बीज बोना चाहिए, जितना बोते हो उतना एक का पदम गुना। पूछ लो, 24 घंटे हमारे पास है। कभी कहते भाई, ये भाई सब बहन जी देवी क्यों बन गई, ये राजा क्यों बन गया? तो देख लो, सेंटर में एक बहन होती है, हर गुरुवार को कितने लोगों के लिए भोग बनाती है। बाबा ने उनको चार हाथ तो नहीं दिया। अभी घर में माता जी एक है, दो बच्चे, एक पति, चार लोगों के लिए खाना बनाती है। दोनों में अंतर है ना, इनको भी चार हाथ नहीं, इनको भी दो ही हाथ। सेंटर में एक बहन है तो दो ही हाथ है। सब आप कितने दिन, हर गुरुवार को कितने लोगों के लिए भोग बनाती है, बनाती कि नहीं, सेवा करती कि नहीं? तो देवी कौन बनता है? समय वही, दो ही हाथ है, भगवान ने उनको कुछ नहीं दिया। विधि बताया सेवा करने के लिए, तप का, श्रीमत के अनुसार सेवा करते हो, सब वर्तमान श्रीमत के अनुसार। अगर कर्म करते हो, श्रेष्ठ कर्म का फल 21 जन्मों के लिए भाग्य बनता है, ये मिनिमम गारंटी है। अनेक जन्म, बाबा ने तो अनेक जन्मों के लिए कहा। कल मुरली में कहा, देखो वर्तमान पूछ लो, श्रेष्ठ कर्म 24 घंटे में, तन से, मन से, धन से मैं कितना करता हूं, लिखो। जांच करना आता है, चेकिंग करना आता है, पैसा गिनती करना आता है, तो ये भी गिनती चाहिए। ओम शांति।